देवीनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय।
शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर्न कर्मा न कर्ता न गंगं न संगं न स्वेक्षा न कायम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् नमो वीतरागम् न बन्धो न मोक्षो न रागादिदोषो न योगं न भोगं न व्याधिर्न शोकः न कोपं न मानं न माया न लोभम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् न हस्तौ न पादौ न घ्राणं न जिह्वान् न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् न जन्मं न मृत्यु न मोघं न चिन्ता न क्षुद्रो न भीतो न कार्ष्यं न तन्द्रा न स्वेदं न खेदं न वर्णं न मुद्रा चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् त्रिदण्डे त्रिखण्डे हरे विश्वनाथम् ऋषिकेश विध्वस्तकर्मादिजालम् न पुण्यं न पापं न चाक्षादिगात्रम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढो न स्वेदं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेहा न कृष्णं न शुक्लं न मोघं न तन्द्रा चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् नमो वीतरागम् नाद्यं न मध्यं न गन्तं न चान्यं न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भाव न शिष्यो गुरुर्नापि हीनं न दीनम् चिदानन्दरूपं नमो गीतरागम् नमो इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी निरूपं स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपं न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकम् रूपं नमो गीतरागम् नमो गीतरागम् आत्मा राम गुणाकरं गुणनिधिम्
संदेहो यदु लभते वासवस्त्री प्रभुत्वम् जल्पं जात्यैर् मन्दिरमनैः तन्नमस्कारचक्रम्। यहाँ तक हो गया। सिद्धे जाने चरिते सत्यपीचा भक्तिर्मोचे धनगति सुखा वंशिका चिंतिके सत्योद्घाटन कथम मुक्ति कामस्यतुंसो मुक्ति दारं परिद्रण महा मोहमुद्राकवासं प्रच्छन्नः कल्ले वैमगमयै हमने सोचा कि ये थोड़ा कठिन होगा तो इसको फिर से कर दें, इसलिए प्रसन्न फल वै मगमयी गंधकार ब्रजति सुखतो देवतत्वावधासी यद्यद्योग्यो न भवति भवत् करके बड़ा पवित्र आचरण है रचरात्म का कितने बताइए। ऐसे कह दिया सिद्धे जाने कितनी करके सत्यपि आपके पास है बहुत अच्छा ज्ञान, आपके पास आपका बहुत अच्छा आचरण है, कितने से कितने होने वाला यदि कोई अमीषा भक्ति योग्य, अगर भगवान के प्रति अमीषा अर्थात उत्कृष्ट भगवान के प्रति यदि मन में उत्कृष्ट भक्ति नहीं है तो रखे रहो अपना ज्ञान, रखे रहो अपना आचरण, कोई काम नहीं। ऐसा क्या भक्ति को कितना महत्वपूर्ण, भक्ति के मायने क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और आचरण सम्यक नहीं है। तो वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि शुद्ध है आपका ज्ञान, पवित्र है आपका आचरण, लेकिन अगर जिनेन्द्र भगवान के प्रति उत्कृष्ट भक्ति नहीं है तो क्या होगा? कितना वंशिका चिंतित एवं अनवधि, जो भक्ति कैसी है अनवधि चुके देने वाली कुंजी के समान है, की है वो चाबी है वो। फिर तो देखें बहुत शुद्ध है आपका ज्ञान, बहुत पवित्र है आपका आचरण, लेकिन यदि आपके मन में जिनेन्द्र भगवान के प्रति अनंत सुख देने वाली कुंजी रूपी भक्ति नहीं है तो ताला नहीं खुलेगा, कौन सा वाला? सत्योद्घाटन भवति ही कथन मुक्ति कामन कामस्य पुंसे, मुक्ति की कामना करने वाले पुरुष के लिए सत्योद्घाटन भवति ही कथन, कैसे वो उद्घाटित करेगा किसको? क्योंकि मुक्ति द्वारम, मुक्ति के द्वार को वो खोल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मुक्ति के द्वार पर परिद्रण महामोह मुद्रा सनातन, मुक्ति के द्वार पर तो मोह की मुद्रा अर्थात ताला लगा हुआ है, और मोह की मुद्रा या ताले को खोलने वाली भक्ति रूपी चाबी ही है और कोई भी नहीं खोल सकता। मोह जो है वो ज्ञान और आचरण से भी नहीं टूटता, दर्शन मोह, दर्शन मोह को टूटता है, जिनेन्द्र भगवान के प्रति भक्ति के प्रति। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के प्रति भक्ति होगी तो हमारा मोह टूटेगा, मोह टूटने पर जो है फिर मोक्ष का द्वार खुलेगा। और जब मोक्ष का द्वार भी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से खुल जाता है, क्योंकि छोटे मोटे मेरा रोज रोज का दिन नहीं होगा, वादिया महाराज इनडायरेक्ट कहना ये कहा, उसमें लग तो ये रहा है कि जैसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पर वो साथ में क्या करेंगे, छोटी मोटी चीजें क्या फर्क करने वाला, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ। मैंने तो सुना है कि भक्ति से तो जो है मोक्ष का द्वार खुल जाता है, ज्ञान और चारित्र जो काम नहीं कर पाता है वो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति भाव, उनके गुणों के प्रति अंदाज, ऐसी भक्ति की महत्ता है। फिर तो देखना अत्यंत शुद्ध ज्ञान है, पवित्र आचरण है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के प्रति अनंत सुख को देने वाली भक्ति रूपी चाबी नहीं है, तो मोक्ष की कामना करने वाला व्यक्ति मोक्ष के द्वार को नहीं खोल सकता, क्योंकि मोक्ष के द्वार पर जो मोह का ताला लगा है उसे तो भक्ति रूपी चाबी से ही खोला जा सकता है। इसलिए भक्ति अपनी अत्यंत होने के लिए भगवान के प्रति प्रथम अक्षरम प्रथम खलु अयम अजमयी रंधकारी समंता। प्रथम का मतलब होता है घटा हुआ, पिछड़ा घटा हुआ है, खलु मतलब निश्चय से, अयम अजमयी हमारे अज मतलब पाप रूपी अंधकार के द्वारा, समंता अर्थात सब तरफ से क्या चीज घटी हुई है हमारे पाप रूपी अंधकार से, क्योंकि पंथा मुक्त मोक्ष का मार्ग किसी और में हमारे लिए ढका हो ऐसा नहीं है, मोक्ष का मार्ग हमारे ही पाप रूपी अंधकार से पूरी तरह से ढका हुआ है। और इस्थपुटित पदा और बड़ा ऊबड़ खाबड़ है, इस्थपुटित अर्थात जिस पे पांव कहीं रखो कहीं पड़ता, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, वो भी हमने ही अपने हाथ से बना लिया है अपने पाप के द्वारा, और क्लेश गर्ते ही रगा दई है, और जिसमें गड्ढे भी बहुत हैं, क्लेश रूपी गड्ढे, दुख संताप रूपी गड्ढे हैं, और बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और अंधकार जिस पर छाया है, बताओ ऐसे मोक्ष के मार्ग पर कौन चल सकता है? बहुत कठिन है ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलना, लेकिन आसान भी है, क्योंकि दूसरे ने गड्ढे खोदे हों, दूसरे ने ऊबड़ खाबड़ किया हो, दूसरे ने अंधेरा फैलाया हो, तो भैया कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या कह रहे हैं, प्रच्छन्न खलु अयम अगमय अंधकार, मेरे ही अज्ञान और मेरे ही पाप के द्वारा उस पर अंधेरा फैला है, उसमें गड्ढे हो गए हैं और वो ऊबड़ खाबड़ हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब करो उपाय, अपने पापों को दूर करने का तो एक ही उपाय है, तत्कष्टेन व्रतति सुखतो देव तत्वाओ भासी यदि अग्रे अग्रे न होती होत भारती रत्न दीपा। एक ही चीज है कि यदि हम उस कठिन मार्ग पर भी मोक्ष मार्ग पर सुख पूर्वक चलना चाहें तो हमारे हाथ में क्या होना चाहिए, तत्वाओ भासी भवत भारती रत्न दीपा अग्रे अग्रे, आगे आगे उस मोक्ष के मार्ग पर अगर तत्व को दिखाने वाला आपकी वाणी रूपी रत्नों का दीपक अगर आगे आगे हो तो फिर आसान हो जाएगा रास्ता। भगवान के प्रति यदि उनकी वाणी के प्रति, भगवान के प्रति तो है ही और उनकी वाणी के प्रति भी अगर हमारे मन में श्रद्धा है, बात वही है, भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान की वाणी, आगम के प्रति श्रद्धा और जो उस रास्ते पर चल रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा, देखो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा ही मुख्य है। और वही बार बार कह रहे हैं इसमें कि
हमारा मोक्ष का मार्ग पर चलना बहुत आसान नहीं है। स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मेरा मोक्ष का मार्ग कठिन कब हो जाता है, मेरे ही पापों से। सो मेरे ऊपर जो रोग शोक की व्याधि इत्यादि आई है, सो थोड़ी कठिनाई आई है, सो मेरे ही पापों से आई है, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं है। मैं तो सुखपूर्वक उस मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं, क्योंकि आगे आगे आपकी वाणी रूपी रत्नों का दीपक मेरे पास हमेशा से है। इसलिए शरीर में अगर रोग भी हो गया है तो मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं। क्लेश रूपी गड्ढे भी हो जाएं तब भी मेरा मार्ग रुकने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पास तो हे भगवान आपकी वाणी की भक्ति रूपी और रत्न दीपक है, जिसके उजाले में मैं अपना मार्ग आसानी से पार कर लूंगा। देखो, इनडायरेक्ट भगवान की भक्ति भी हो गई, और ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं समझना कि हमें रोग हो गया सो हमारा मार्ग अवरुद्ध हो गया। हमारा मार्ग तो, हम तो ज्यों की त्यों सुखपूर्वक मार्ग पे जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा करना हो तो कर देना, नहीं तो मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं इससे, वो तो चल ही रहा, हमारा तो काम चल ही रहा है। आप इस तरह कह रहे हैं, सोचिएगा आप, भगवान से इस तरह की भक्ति करने वाला तो हमने बिरला ही व्यक्ति देखा। कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन जैसे सब कुछ मांग दिया अपनी भक्ति के द्वारा। फिर से समझें, हे भगवान, यह जो मोक्ष का मार्ग है मेरे ही पापों के अंधेरे से घिरा हुआ है, मेरे ही पापों की वजह से ये ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न प्रकार के संक्लेश रूपी गड्ढों से युक्त हो गया है। इस पर कौन व्यक्ति है जो सुख से चल सकता है? वही व्यक्ति सुख से चल सकता है जिसके पास में आपकी वाणी रूपी रत्नों का दीपक आगे आगे रोशनी फैलाता चला जाता है। वो व्यक्ति ही आसानी से इस मार्ग को पार कर सकता है। इस तरह ये अपन ने दो पद पढ़ लिए। अब देख लें अपन इसका हिंदी में थोड़ा सा, वैसे तो समझ में आई है फिर भी। माना उसमें ज्ञान विपुल है, माना उसमें ज्ञान विपुल है और बहुत वो चरितवंत है। यदि अनुपम सुख देने वाली भक्ति रूपी कुंजी उसके पास नहीं है तो मुक्ति कामना करने पर भी ऐसा साधक मोक्ष द्वार पर लगा मोह का ताला कैसे खोल सकेगा अगर उसके पास भक्ति रूपी कुंजी नहीं है। शिवपुर का यह पंथ पापतम जिस पर छाया, दुख रूपी बापी ने जिसको विकट बनाया, तो प्रभु सुख से कौन मार्ग पर सहज स्वयं चल पाए। यदि आपकी वाणी का दीप निरंतर आगे आगे अपनी तमहर ज्योति नहीं फैलाए, आपके वाणी रूपी जो ज्योति है वो आगे आगे रहे, तो हमारा मोक्ष मार्ग आसान हो सकता है। इस तरह भगवान की भक्ति अपन ने करी। तीनों चीजें होनी चाहिए जीवन में, भक्ति भी, ज्ञान भी और आचरण भी, तभी काम बनेगा। कुछ लोग खूब खूब काम करते हैं, आचरण का पालन करते हैं, कुछ लोग ज्ञान ही ज्ञान में लगे रहते, कुछ लोग भक्ति भक्ति में लगे रहते। कहते नहीं, भक्ति भी करो, ज्ञान भी हासिल करो और चारित्र को भी उज्जवल बनाना चाहिए। आज के प्रश्न और कल के प्रश्न, ये कल के वाले भी रखे हुए हैं, इसको बाद में करेंगे कि पहले कर लें? क्या पता कल के लोग आए कि नहीं आए, आए तो होंगे। चलो इसी को करते हैं। भाषा समिति किसे कहते हैं? हित मित और प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। ये मुनि महाराज का एक मूल गुण है, अनिवार्य है उनके लिए। वचन वह बोलेंगे जिससे दूसरे का हित हो, और टेलीग्राफिक, टू द पॉइंट, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए और बहुत लिमिटेड। दो शब्द से काम चले तो तीसरे की आवश्यकता नहीं, तीन से काम चले तो चौथे की आवश्यकता नहीं, टेलीग्राफिक जिसको अपन कहते हैं। और प्रिय अर्थात सुनने में भी प्रिय लगना चाहिए। हितकर तो हैं लेकिन कटु हैं, तो कहते नहीं, तो भाषा समिति नहीं बनेगी। कटु मन से कहे गए वचन भी मित हित प्रिय नहीं कहलाएंगे। इस तरह हित मित प्रिय वचन को ही भाषा समिति कहते हैं। महाराज, कर्म बड़ा है कि भाग, दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही बराबर बराबर हैं। कभी कभी पुरुषार्थ ज्यादा हो जाता है, कभी पुराना किया हुआ पुरुषार्थ पुराना किया हुआ पुरुषार्थ ही तो भाग्य है, किसी और ने हमारे माथे पर हमारा भाग्य थोड़ी लिखा, हम ही अपने हाथों से अपने माथे पर भाग्य लिख लेते हैं। जो इस क्षण करते हैं अगले क्षण वही हमारा भाग्य बन जाता। किसी से आप कड़ी बात कहो तो आपका भाग्य निर्धारित हो गया कि वो आपको तमाचा तक मार सकता, क्योंकि आपने उससे कड़ी बात कही थी, है कि नहीं? भाग्य तुरंत निर्धारित हो गया आपने किसी से ऐसे वचन बोले तो। तो इस तरह हमारा भाग्य हम अपने हाथ से निर्धारित करते हैं। कभी कभी भाग्य की प्रबलता हो जाती है, वर्तमान का पुरुषार्थ काम नहीं करता, और कभी कभी जो है वर्तमान का पुरुषार्थ अपना जागृत हो जावे तो अपने पूर्व में बांधे गए कर्मों को भी अपन काट करके आगे बढ़ जाते हैं। देखो दोनों ही पटरियों पर रेलगाड़ी चलती है, एक पटरी पर नहीं चलती है, चलती क्या एक पटरी पर? दोनों पैरों से ही व्यक्ति चलता है, एक पैर से चलता कि दो पैर से चलता? तो एक से है, दो ही संग रखते क्या? नहीं, एक ही से चलता, लेकिन दोनों ही हैं, एक आगे तो दूसरा पीछे जरूरी है। जो आगे है वो पुरुषार्थ है, जो पीछे छूट गया वो भाग्य है। अब ये जो आगे था वो भाग्य बन जाएगा और पीछे वाला पुरुषार्थ बन जाएगा, वो आगे जाएगा ये पीछे आएगा, दोनों इस तरह से भाग्य और पुरुषार्थ के दोनों पैर हैं मानो, ऐसा ये जीवन में चलता रहता है। मुनि महाराज के वचन कैसे होते हैं? हितमित और प्रिय होते हैं। अनायतन किसे कहते हैं? जो अब इसको क्या कहें, अपन तो आयतन की परिभाषा जानते, अनायतन की नहीं जानते। आयतन की परिभाषा ये है, जो आयतन नहीं है वे अनायतन है। सच्चे देव गुरु शास्त्र और उनके मानने वाले को आयतन कहते हैं, इसके अलावा सब जो है वो अनायतन कहलाएंगे। बस ये परिभाषा अपन को। आपके यहां से भट्टारक जी की नसिया जाने के बारे में जब जब भी सोचता हूँ तो मन बहुत व्याकुल हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं। सभी लोग तो, क्योंकि किसी की अशक्तता भी होती है, अशक्त होने से जल्दी से आ सकता यहाँ पर और वहाँ पर जो है नहीं आ सकता, फिर भी भैया जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ही अपन को कार्य करना पड़ेगा। अपने मन में वो सारी बातें बनाए रखें जिनसे कि अपने जीवन में अपना कल्याण होता है, उन्हीं को रिवाइज करते रहें। देखो जीवन में जो अच्छे क्षण हैं वे बीत जाते हैं, पर उनकी स्मृति हमारे बुरे क्षणों में भी काम आ सकती है यदि हम लेना चाहें तो। इसलिए ऐसा ही करना चाहिए। जिस वेदी पर अभिषेक किया जाता है क्या उसी जगह पूजन करना चाहिए या कि अन्य वेदी पर भी कर सकते? देखो अगर अपन ने अभिषेक किया है तो कम से कम उस वेदी पर अर्घ जरूर चढ़ाएंगे, बस फिर बाद में दूसरी वेदी पर आपको सुविधा है तो दूसरी पे पूजा कर लो। जहां अभिषेक किया वहां पर एक अर्घ तो अभिषेक के बाद जरूर चढ़ाना चाहिए, फिर पूजा कहीं भी कर सकते। अच्छा प्रश्न, एक बार पूजा करने के बाद दूसरे दिन क्या उन्हीं कपड़ों से बिना धोए पूजा कर सकते? नहीं। देखो देह परस्ते होत अपावन निष्दिन मलिहारी, इस देह से स्पर्श होने पर वे उतारने के बाद अब कोई काम, जैसे माला पहन लो अपन और फिर कहो भाई दो मिनट तो पहनी, तुम पहन लो दूसरे को, वो कहेगा अब नहीं आपकी उतरी उतराई माला है वो नहीं, फिर देह पर एक बार चीज हो गई फिर उसको पुनः धो करके फिर पहनेंगे। इसलिए कई बार ऐसा लोग करते हैं बारिश बारिश के दिनों में कि पूजा वूजा करके गए भैया शुद्ध जाकर के अपने उतार के ज्यों के त्यों सूला के रख दिए और फिर बाद में हाँ। तो इसमें सावधानी अपन रखें, पूजा और प्रक्षाल में तो वस्त्रों की शुद्धि विशेष रूप से रखनी चाहिए, इसलिए ऐसा ना करें तो बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम देवशास गुरु की पूजा के स्थान पर नौ देवता नमोकार महामंत्र अन्य कोई पूजा कर सकते हैं। वैसे तो नित्य पूजा में देव गुरु शास की पूजा ही सबसे पहले, प्रथम देव अरहंत श्रुत सिद्धांत जी यही पूजा लिखी है भैया, सबसे पहले देव गुरु शास की पूजा का ही विधान है। फिर उसके बाद आपको अगर नहीं है समय तो कम से देव गुरु शास की पूजा का आह्वान करें और अर्घ चढ़ा देवें, इतनी तो करें, और फिर उसके बाद महावीर स्वामी की और चाहे नौ देवता की जो करना हो, पर इतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि देव गुरु शास्त्र में सब आ गए हैं, सब भगवान कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय सब देव में आ गए, तीन तीन कम नौ करोर मुनि महाराज आ गए, जिनवाणी आ गई, सब आ गया, नौ देवता उसी में आ गए। देव गुरु शास्त्र में अगर देखा जाए तो सबसे पहले देव गुरु शास्त्र का आवाहन करके अर्घ तो कम से कम चढ़ाएं ही, फिर बाद में दूसरी पूजा करें, और अगर समय हो तो देव गुरु शास्त्र की ठाट बाट से पूजा करके फिर एक और पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा। शादी ब्याह इत्यादि में बुफे में खाने के लिए मना करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जिससे हमारी परंपरा बनी रहे, क्योंकि ये जो बुफे सिस्टम है वो हमारे यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता से आया है, हमारा ओरिजिनल नहीं है, और इसमें इसका बिगड़ा हुआ रूप है। जो वास्तविक रूप है वो कुछ और अलग है, वो बहुत पवित्र है वास्तविक रूप, लेकिन जो आज वर्तमान में नकल के रूप में किया जाने लगा वो अत्यंत अपवित्र हो गया है। इसलिए जो है इसको, इससे बचना चाहिए जहाँ तक हो सके अपने जीवन में। दूसरे को भी ऐसी सलाह देना चाहिए कि भैया इस तरह की प्रक्रिया में अपन शामिल नहीं हो, 102 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे तो फिर अपनी बात का असर पड़ेगा। एक अकेला व्यक्ति निषेध करता भी है तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लोग कहते अरे जी अपनों अलग ही चलाओ और हम तो जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर एक कोई कर रहा है अच्छी चीज़ है तो दो हो जाओ, वो 200 हो जाएंगे और 200 से 2000 हो जाएंगे तो फिर मेजॉरिटी। एक बार तय करना है अपन को, जैसे अपन ने शुरू किया है वैसे ही अपन इसको, क्योंकि उसमें विकृतियां आ गई थी तो अच्छी प्रक्रिया, खराब नहीं थी लेकिन बन गई वो खराब। बनाने फूड हैंडल करने वालों की कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं रहती, बनने के स्थान की शुद्धि अशुद्धि नहीं रहती, जो चीज बन रही है उसकी शुद्धि अशुद्धि नहीं रहती। इसलिए जो है इस प्रक्रिया में अपने को, और ये जो है जैसे अपन लोग टेबल कुर्सी पे लगा करके और बिठाल करके फिर परोस के खिलाते हैं, वो बुफे सिस्टम नहीं कहलाए। हाँ, उसमें तो परोस रहा है एक व्यक्ति, वो बुफे नहीं है। बुफे वो कहलाएगा जिसमें अपने हाथ से और जगह जगह से उठा करके काउंटर पर से ले ले करके और फिर वो जो खाते हैं वो बुफे सिस्टम है। उसके लिए निषेध किया गया कि भैया ये 17 जगह भोजन रखा, पानी उधर पिया, उधर जूठे जा रहे, उधर घूम रहे सब में, और सामान उठा उठा के खा रहे हैं और वो फेंक रहे हैं रोटियां रात में खा रहे हैं, इसके लिए निषेध है। अपने टेबल कुर्सी पर बैठ करके और कोई ने परोस दिया तो बढ़िया से भोजन करो, उसमें क्या दिक्कत है, इसके लिए कोई निषेध नहीं है। इस तरह आएंगे तो अपने आप, ये तो विवेक की बात है अपने स्वयं के, है कि नहीं, हम क्या कहें उसमें, ये तो अपना विवेक स्वयं है कि शुद्धि पूर्वक भोजन करें, है कि नहीं। कई बार ऐसी स्थिति, देखो जल्दी नहीं करना चाहिए, प्रश्न सुन करके एकदम जल्दी करते हैं अपन, बहुत कठिन काम है प्रश्न का जवाब देना, सब बातों का विचार नए की अपेक्षा, देखो उनका कहां तक चला गया ध्यान, जूते पहन के करना चाहिए कि नहीं, आपका पूरा ध्यान जा रहा कि बुफे सिस्टम, उधर भूल जाओ। जब जा रहे हैं अपन ट्रेन में और जा रहे हैं बस में तब भी जूते चप्पल कौन खोलता है मुझे बताओ आप। अब वो ये कह रहे हैं कि जूते चप्पल खोल करके खाएं तो फिर वहां पर कहां उतारे, बस में बैठे हुए हैं, जीप में बैठे हुए, अपनी घर की जीप लेके भी जा रहे हैं और जूते चप्पल पहने और आराम से खाते चले जाते, आइसक्रीम खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं, ले लेकर के खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें सब खाते रहते कि नहीं जूते चप्पल पहने, मुझे बताओ कौन है इसमें। भूल गए एकदम अपन वो चीज, उनने पूछा जैसे ही तो अपना सारा ध्यान गया कि अरे जूते चप्पल पहन के बैठ के खाने का कह रहे हैं। सब चीजों का ध्यान रख के फिर देखो इसमें समाधान जहां तक अपन से बने। जब अपने घर में भोजन कर रहे हैं, दूसरे के यहां गए हैं तो भैया जूते चप्पल उतारने की सुविधा है तो वहां उतारो, हाथ पैर धो, फिर बढ़िया से बैठ के खाओ, लेकिन रास्ते में चले जा रहे हैं अब क्या करेंगे, अब कहां जूते चप्पल उतारेंगे और कहां हाथ पैर धोएंगे, तो जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, सूत्र है उसका, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, तो भैया फिर वैसी व्यवस्था करो। अरे हम लोग भी जाते थे जीप में भर भर के आचार्य श्री के पास में और रास्ता में पानी पी रहे, रास्ता में चाय पी रहे, रास्ता में दूध पी रहे, और जूता कहां खोले होते, कौन का चलता है। एकदम अपन लोग जो है फिर एकदम वही बात है कि खे हैं तो हलुआ और नहीं तो फिर भूखे रहे, एकदम नहीं, हाई फाई बिल्कुल नहीं। जहां तक संभव है वहां तक हम करें और जहां बिल्कुल परवश है वहां पर कौन को शौक होता है कि जूता पैर के भोजन करें, कौन को शौक हो रहा बताओ, जूता कछु पवित्र चीज है का। लेकिन अब परिस्थिति है और परिस्थिति वश कोई ने अगर पानी पी लिया और जल्दी से उतर करके अब ट्रेन में से जूते खोलो और पानी भरो फिर ले आओ और जब तक गई ट्रेन उसके बाद जल्दी दौड़ो पानी भरो और ले आओ यहाँ पर, अब जूते कहां से खोलेंगे इसमें। तो सब बातों का विचार करके फिर निर्णय लेना चाहिए, जल्दी से नहीं, हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए।
देखो अब दूसरा पूछ रहे हैं, निम्न शब्दों का अर्थ उदाहरण सहित बताइए। आकुलता, आकुलता शब्द का मतलब है व्यग्रता या कि राग द्वेष से युक्त अवस्था, विकल्पात्मक या संकल्प विकल्पात्मक, मैं ऐसा हूं ये मेरा है, ये आकुलता कहलाती। मैं सुखी दुखी हूं और मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, ये सब आकुलता ही है। वास्तव में तो मैं शुद्ध बुद्ध एक निरंजन स्वभाव हूं, मेरा मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। वरना मैं अपने को मां मान करके, मैं अपने को पिता मान करके और मैं इन सब परिवारजनों को अपना मान करके क्या करता हूं, यही तो आकुलता है। ये जो संकल्प विकल्प है वही आकुलता है, उसी को व्यग्रता कहें। और मोक्ष में यह आकुलता नहीं है, अर्थात मोक्ष में राग द्वेष इत्यादि संकल्प विकल्प नहीं है, वही निराकुलता कहलाएगी। अटवी किसे कहते हैं? जंगल को अटवी कहते हैं, सघन जंगल को अटवी कहते हैं। मेरी भावना में आता है अटवी से नहीं भय खावे, अटवी का मतलब वहां पर जंगल है। महाराज नयो निक्षेप में क्या अंतर है? देखो वस्तु के सापेक्ष कथन करने को नय कहते हैं, एक एक अंश को एक एक पहलू को सापेक्ष रूप से कथन करना नय है, और किसी भी वस्तु को जानने के लिए जो उपाय किया जाता है वो निक्षेप कहलाता है। जैसे कि हमने इसका नाम पुस्तक रख लिया, इसको पुस्तक कहने से हम फौरन समझ जाते, ये कहलाएगा नाम निक्षेप। जैसे कि हमने मूर्ति में भगवान की स्थापना कर दी, महावीर स्वामी को लाओ तो महावीर स्वामी की मूर्ति ले आएंगे, स्थापना हो गई। और इसी तरह से द्रव जो बाद में होने वाला उसको पहले से ही मान लें, सेठ जी के लड़के को भी अपन क्या कहते, सेठ जी, छोटे सेठ जी आ गए हैं, तो ये द्रव निक्षेप कहलाएगा। और जो जिस समय जिस पर्याय से युक्त है उसका ही कथन करना, सेठ जी बैठे हुए हैं गद्दी पर तो उनको सेठ जी कहना, ये सब निक्षेप कहलाता है। चार प्रकार का, और नए तो वस्तु के प्ररूपण करने की प्रक्रिया का नाम नए है। छह ढालों के नाम बताइएगा मुनि के पिछी अपरिग्रह, प्रश्न इरिलेवेंट, हाँ उसमें कोई रिलेशन नहीं है प्रश्न में, इसलिए मैं उसमें मेहनत करूं और समय उतना है नहीं। वो जीव जो अनादि काल से नित्य निबोध से नहीं निकला, उसकी भी भविष्य की सभी पर्यायों को सर्वज्ञ अपने केवल ज्ञान में जानते हैं, जबकि अभी उसने किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ नहीं किया। उसके अनुसार सभी जीवों का पूरा भविष्य निश्चित है और जैसी गति वैसी मति के अनुसार वे पुरुषार्थ करते रहते हैं। इस प्रकार वर्तमान में चाहे तो भी अपना भविष्य बदला नहीं जा सकता है। ऐसी आपकी मान्यता है तो बैठ ही रहो, हाथ में हाथ धरे, काय को प्रश्न पूछ भी आए, हमारे बताए से आप खो समझ में आने हुई है तो आ है, और ने आने हुई है तो ने आ है। जैसी भगवान ने देखी हुई है वैसी हुई है, काय को परेशान हो रहे, पुरुषार्थ काय को कर रहे जी बात समझने के लिए। अरे भैया इसी से सिद्ध होता है कि हम जो है अपना अहंकार करते हैं और संकलेश करते हैं, उस अहंकार और संकलेश से बचने के लिए कहा गया कि जैसा कार्य कारण व्यवस्था है वैसा ही होगा और इससे अलावा कुछ नहीं होगा, कारण तो कोई और मिले और कार्य कुछ और हो जाए, ऐसा होता है क्या? जैसे कारण मिलेंगे वैसा कार्य होगा, जैसा कार्य होना होगा वैसे कारण मिलेंगे, लेकिन कार्य कारण व्यवस्था तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। भगवान के देखे अनुसार हमारा परिणमन नहीं होता, हमारा जैसा परिणमन होता वैसा भगवान जानते देखते हैं, कहते नहीं है। बताओ, कहते सिर्फ इतना ही है कि जो घटित हो उसमें समता रखना। जब अपने मन का हो जाता है तो हम अहंकार कर लेते कि मैंने किया, तो चुपचाप कान पकड़ते कि तुम क्या करोगे, बस तुम्हें परिणमन की वैसे ही योग्यता अतिशो होगा। और जब जब हमारे मन का नहीं होता, संकलेश करते दीनहीन हो जाते, कहते अरे उसमें योग्यता ही नहीं थी, तुम रेत में से तेल निकालना चाह रहे, योग्यता है ही नहीं और तुम परेशान हो रहे हो, कह रहे कि मेरा भाग्य दुर्भाग्य। अरे रेत में से तेल निकलता है क्या? जिस कारण से जो कार्य हो ही नहीं सकता उसमें संकलेश करने से क्या मतलब है? ऐसे संकलेश और अहंकार से बचाने के लिए लिखा है कि जैसा कार्य कारण होगा वैसा कार्य होगा, जैसा कार्य होना है वैसे ही कारण मिलेंगे, ये कथन करने की शैली है। इसलिए भैया इसमें उलझो मत, हम तो यही कहेंगे। और इसके अलावा आपने जैसी धारणा बना ली हो अपन क्या कह सकते, यदि संभव हो आपको उचित लगे तो श्रवण सूत्रम के पदों का भी क्रमवार अर्थ समझाने की, श्रवण सूत्र वो श्रवण सूत्रम उसके पदों का भी क्रमवार अर्थ समझाने की कृपा करें। देख लेंगे बहुत सारे पद हैं उसमें, उसमें चुन चुन करके कुछ पदों को ही अपन समझें तो समझ सकते हैं, पर उसके लिए वो समय नहीं मिल पाता, ऐसा हो जाता। सोचा तो यही था कि उसके सूत्रों की भी व्याख्या करेंगे। श्रवण सूत्र मतलब श्रवण सूत्रम का कह रहे हैं ये, जो अपन ने सुबेरे शुरू किया उसमें से कुछ ही सूत्रों के अपन ने किए हैं। अब वो 16 कारण भावनाओं के सूत्र उसमें है नहीं, 10 लक्षण आएगा तो फिर उसके सूत्र आ जाएंगे, कर्म सिद्धांत के भी सूत्र उसमें हैं तो फिर अपन उनको पढ़ेंगे, पर पूरा तो शुरू से नहीं पढ़ पाएंगे। 756 गाथाएं हैं, कम से कम जो है आधे दिन तो रहे नहीं, पर 350 दिन का मामला है, दो दो हो पाएंगे, तीन तीन एक दिन में। कल 3 बजे से कोई ग्रंथ का वाचन होगा क्या? कल जो है हम लोग सोच रहे हैं 4-5 दिन के लिए कि वो क्या बोलते हैं करणानुयोग दीपिका, उसके पहले भाग को थोड़ी देर डिस्कशन करेंगे। रतनलाल बैनाड़ा भी आ गए हैं तो वो भी साथ में, तो जो लोग उसमें रुचि रखते हैं, कठिन विषय है क्योंकि करणानुयोग का विषय है, फिर भी जो लोग करणानुयोग के विषय में रुचि रखते हैं तो वो शामिल हो सकते हैं उसमें, सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं उसमें है। क्या चीज? हाँ वहीं से कमरे में से ही करेंगे, ज्यादा बढ़ाना नहीं उसको, नहीं तो आडंबर ज्यादा होता काम कम होता है। अब व्यवस्था में ही लग जाएगा, कहाँ लगाओ रे मंच, कहाँ लगाओ रे माइक, दुनिया भर की बातें करो, वहीं पर आकर के बैठ जाएंगे, नहीं बनेंगे तो छत पे बैठ जाएंगे, उसमें क्या। पहले कैसा होता होगा, पेड़ के नीचे बैठ गए महाराज जी और सब कुछ होगा, अब तो सारा ताम झाम मंच वंच सब बढ़िया लगना चाहिए, फिर उसके बाद शुरू होंगे वो, थोड़ा काम ज्यादा विस्तार होने उतने ही करेंगे। 5-6 दिन को रहना, 5 तारीख को मुझे चले जाना, 5 ही तारीख को उनको भी चले जाना, आचार्य के पास जाएंगे वो, तो कुल मिलाकर के 6 दिन का मामला है। अभी ऐसे ही हम लोग रोज डिस्कशन करते ही हैं तो उसी में बैठ करके जो है जिनकी रुचि है वो करणानी योग को समझेंगे, उसमें से पढ़ लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। ये क्या चीज है? सल्लेखा। सल्लेखा नहीं भैया, सल्लेखना। सल्लेखना नहीं ली हो तो मृत्यु से कुछ समय पहले इस प्रकार के भाव थे, मेरे जाने का समय आ गया, हॉस्पिटल के बिस्तर से मुझे नीचे चटाई पर लिटा दो। इस क्रिया के बाद हाथ पर नमोकार का जाप करते हुए देह त्याग दी, तो इसे क्या कहेंगे? ये अंतर मुहूर्त के लिए ली गई सल्लेख नहीं है। हमने नहीं समझाया था आपको कि मरण निकट आते जान करके सब परिग्रह का त्याग कर दिया, मुझे तो अब यहां से नीचे लिटा दो, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई अन्न जल इत्यादि सबका त्याग, अंतर मुहूर्त के लिए भी ऐसा कर दिया तो समझ लो आपके परिणाम उज्जवल हैं। आयु बंधेगी तो अच्छी ही बंधेगी, या कि आयु अच्छी बंध चुकी होगी इसलिए ऐसे परिणाम हो रहे, दोनों ही चीजें हैं। पहले आयु अच्छी बंध गई होगी तो आखिरी समय अच्छे परिणाम से मर रहे हैं, और अगर आयु नहीं भी बंधी होगी तो अच्छे परिणामों से अच्छी आयु बंधेगी। ये भी संलेखना का एक प्रकार है भैया, है इसमें भी ऐसा ही मान, त्याग अगर कर दिया है तो फिर वो। नैमावर के आसपास कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं? नैमावर से उधर भी जाते हैं, मुक्तागिरी जाते हैं, रामटेक जाते हैं उस तरफ पीछे के रास्ते से, बानापुरा के रास्ते से, और गोमटगिरी तो है ही, और उधर नैमावर से सिद्धवरकूट वो 125 किलोमीटर है, और फिर आसपास तो सिद्धवरकूट से उन पावा चले जाइएगा, बावनगिरी बावनगजा चले जाइएगा, बावनगजा से थोड़ा आगे बढ़िएगा पावागिरी आ जाएगी, उस एरिया में मैंने 150-200 किलोमीटर के एरिया में, एकदम निकट नहीं है, 150 है हाँ, उसको दूर कहेंगे आप? 100-200 किलोमीटर को दूर कहाँ मानेंगे अपन, उतने पास, इससे पास पास तो नहीं मिलेंगे, बहुत पास नहीं, हाँ उतने पास नहीं है। आप आजकल प्रवचन में 16 कारण भावनाओं के बारे में बता रहे हैं, अच्छी बात, सुनकर के मन में बहुत आह्लाद है। आपने विश्व दर्शन विशुद्धि और विनय भावना के बारे में बताया, ये भावनाएं क्या व्यक्ति जीवन भर नहीं भा सकता क्या? अरे भा सकता है, उसमें क्या, 16 कारण भावनाएं भाद्रपद में ही क्यों याद आती हैं? अब क्या करें, अपन को फुर्सत ही नहीं है अच्छी बातें याद करने के लिए, तो अपन ने दिन निश्चित कर लिए कि भैया 16 कारण मतलब 16 दिन, फिर उसके बाद बोलना ही नहीं अपने को, याद ही नहीं करना भूल से, 10 लक्षण में ही 10 लक्षण, बाकी दिनों कोई नहीं, ऐसा नहीं है। 10 लक्षण भी हम पूरे जीवन भर भावना भा सकते, रोज क्षमा भाव तो हमारा अकेले एक ही दिन थोड़ी धारण करना चाहिए, हमेशा विनय संपन्नता एक ही दिन थोड़ी रहनी चाहिए, वो तो हमेशा होनी चाहिए, दर्शन विशुद्धि भी हमेशा ही रहनी चाहिए पूरे जीवन भर, पर फिर भी अपन ने कुछ दिन ऐसे बना लिए जिनमें जरूर से उन चीजों की याद आएगी और वो हमेशा बनी रहे। इनकी पूजा सिर्फ भाद्रपद में की जाती है, हाँ भैया भाद्रपद में विशेष रूप से होती, वैसे तो वर्ष में 3 बार 16 कारण भी आते हैं, 10 लक्षण भी आते हैं, इनमें 4-4 महीने के अंतराल से। ये तो बहाना है, एक तरह से धर्म करने का बहाना है, किसी तरह तो करो। वैसे तो आचार्य श्री कहते कि रोज ही पर्व का दिन है, कोई ना कोई भगवान के गर्भ जन्म तप कल्याणक की तिथियां अगर देखो तो 120 तिथियां तो वो ही हो गई, फिर 10 लक्षण जोड़ लो, तीनों शाखाओं के परीक्षण जोड़ लो, और भी सारे व्रत अगर देखो तो कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाएगा जिस दिन कोई ना कोई व्रत नहीं हो। अपन करना चाहें तो 365 दिन जो है व्रत कर सकते हो, नहीं है सामर्थ तो ऐसे व्रतों क्यों रख दिया है कि उस दिन तो कम से कम हो ही जाए, अपने मन में वैसे भाव आ जावे, इस दृष्टि से है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय।